मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 10 फरवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं पूनम वाजपेयी, जो टाटा झारखंड से हैं, जितेंद्र राजपूत, आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, योगेश कुमार, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, और गणेश ठाकुर, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो पूनम, जितेंद्र, योगेश और गणेश, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब एक दो कुछ अलग सी बातें, और बातें ये हैं कि फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स ने मुझे, इस बात की बेहद खुशी है और आप सबको बताते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मेल भेजे हैं और मेल भेजकर सिक्स बैच के स्टूडेंट को वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है, जो क्लासेस नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाली हैं, नेक्स्ट वीक के संडे, और उन्होंने अपनी तरफ से एक स्वयं को सीनियर समझते हुए क्या वो हैं ही, कुछ अच्छी सलाहें भी दी हैं। सलाहें उसी तरह की हैं मित्रों कि आप सब अपने को खाली करके आएं, मन में किसी तरह का संदेह लेकर के ना आएं। आप यहां से बहुत कुछ लेकर के जाएंगे और ये 15 दिन आपके जीवन के सबसे अमूल्य दिन होंगे। बाद में आप इन्हें याद करेंगे, आप इन्हें व्यर्थ न गंवाएं। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं सलाह के तौर पर। तो मित्रों, पहली बात तो यह कि जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट जो सिक्स्थ बैच को वेलकम कर रहे हैं, मैं अपने सभी फिफ्थ बैच के स्टूडेंट को और भी जो दूसरे बैच के स्टूडेंट ने जो मेल भेजे हैं, उन सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात का सच पूछे तो थोड़ा सा संतोष भी है कि 15 दिनों के अंदर जो एकेडमी उनके अंदर एक वैल्यू पैदा करने की कोशिश करती है, जीवन मूल्य कल्टीवेट करने की जो कोशिश करती है, उसकी झलकियां इस तरह की बातों में दिखाई देती हैं। इस तरह के मेल जो कल मुझे मिले हैं, उसमें तीन दोस्तों के नाम मैं लेना चाहूंगा। वो हैं अवनीश साहू बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, रितंभरा आर्य पटना बिहार से, और रंजीत रंजन नवादा बिहार से। लेकिन एक और भी अच्छी बात यह है मित्रों कि इस बीच में मुझे सिक्स्थ बैच के जो स्टूडेंट आने वाले हैं, उनके भी कुछ मेल मिले हैं, और उसमें उन्होंने अपने फिफ्थ बैच के स्टूडेंट की इन भावनाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है, अपने पूरे बैच की तरफ से धन्यवाद व्यक्त किया है। मुझे अच्छी बात यह लगी कि उसमें यह नहीं लिखा गया कि मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद या आभार, बल्कि सब सिक्स्थ बैच के पूरे स्टूडेंट की तरफ से धन्यवाद और आभार। तो ये फिफ्थ बैच के स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद और आभार है। एक बहुत ही सुंदर, एक कह लीजिए उपक्रम है दोस्तों, और ये बड़ा सुखद संयोग है। तो इसके लिए मैं अपने सभी सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट्स को बिना मिलने से पहले ही उन्हें धन्यवाद देता हूं और उनके इस उपक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। मित्रों, अब एक सूचना जो हर शुक्रवार को दी जाती है, कई सूचनाएं जो हर शुक्रवार को दी जाती हैं। आपको मालूम है शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, तो वो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी, और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, और योजना के दो आर्टिकल, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स, एक वीकली क्वेश्चन भी दिया जाता है मेंस के पैटर्न पर जो आधारित होता है, उसकी तैयारी करें, आप उसे लिखने का अभ्यास करें। और जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट रहे हैं, उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों, जो मुख्य खबर है जो कल के आकाशवाणी से मैं यदि उठाना चाहूं, तो वह तमिलनाडु का घटनाक्रम है। तमिलनाडु का जो राजनीतिक घटनाक्रम आप देख रहे हैं उसको आधार बनाकर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप जनरल स्टडीज मेंस की मैं बात कर रहा हूं कि जब सेकेंड पेपर को उठाकर देखेंगे तो आपके सेकेंड पेपर का टाइटल है उसमें आपको दिखाई देगा तीन शब्द, उसमें है तो पांच लेकिन मैं शुरू के तीन शब्दों को लेकर के चल रहा हूं और वो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके बाद फिर सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दोस्तों, इसमें जो तीन शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अब आप देखेंगे कि इसमें जो गवर्नेंस है जो पॉलिटी है ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुड़े हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अप्लाई करने के एक तरीके हैं, आप जो हमारा संविधान है संविधान को कैसे लागू करेंगे उसी के तहत गवर्नेंस काम करती है, उसी के तहत हमारे देश की पॉलिटी भी चलती रहती है क्योंकि जो नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा वो खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो तीन अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, याद रखिए कि ध्यान मतलब ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अलग अलग होने के बावजूद ये अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे या आप पॉलिटिक पढ़ेंगे या जब गवर्नेंस को पढ़ेंगे अलग से टॉपिक के रूप में, तो आपको चाहिए कि आप उस समय अगर एक को पढ़ रहे हैं तो बाकी दो को भी उसमें जोड़ने की कोशिश करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तभी आप जो सिविल सर्विस में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आप आंसर देने लायक बनेंगे। ये तो आप मानकर चलिए फ्रेंड्स कि अब वह दिन खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, जब आप रटे रटाए उत्तर वहां लिखकर आ सकते हैं। चाहे आप इसका दुख शोक मनाएं इसके खत्म होने का या उत्सव मनाएं, ये आपके ऊपर है, लेकिन उससे होना जाना कुछ नहीं है। रटे रटाए प्रश्नों के दिन लग चुके हैं, अब तो आपको उत्तर खुद ही तैयार करने पड़ेंगे, रटे हुए उत्तर काम नहीं आएंगे, तो अब आप क्या करेंगे? तो इसका एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि पढ़ने के आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और उस पढ़ने के तरीके को आप कैसे बदलेंगे उसकी छोटी छोटी सी झलकी मैंने अभी आपको दी कि एक दूसरे से रिलेट करके, और 15 दिन की क्लास में इनफैक्ट सच पूछे तो इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर होता है कि आप कैसे पढ़ेंगे। तो मित्रों, अब हम तमिलनाडु की घटना को देखते हैं कि तमिलनाडु की घटना में क्या चीज हमें दिखाई दे रही है। न्यूज में आपने सुना कि गवर्नर है, गवर्नर के पास एक ही पार्टी के दो लोग पहुंचते हैं, एक ही पार्टी के दो लोग, AIDMK जयललिता जी के निधन के बाद जो वहां पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, दो लोग पहुंचते हैं, एक तरफ शशिकला जी पहुंचती हैं और वो दावा करती हैं कि मैं सरकार बनाऊंगी, उन्हीं के पार्टी के पनीर सेल्वम जी पहुंचते हैं और वो अपना दावा पेश करते हैं। जयललिता जी के निधन के बाद सेल्वम जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो AIDMK पार्टी थी उनके जो विधायक थे उन विधायकों ने शशिकला जी को अपना नेता चुना, राइट? या आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये पॉलिटी हो रही है, ये मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, अपना नेता चुना। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि विधायक दल का नेता चीफ मिनिस्टर होगा, मतलब उसमें लिखा यह है कि उसको गवर्नर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, विधायक दल का नेता, बशर्ते कि उसके पास बहुमत हो। तो AIDMK के पास बहुमत तो है। अब जितने MLAs थे उन MLAs ने मिलकर के शशिकला जी को अपना नेता चुन लिया, यानी कि उनकी संवैधानिक दावेदारी बन गई कि उन्हें गवर्नर CM सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो यह शशिकला जी का दावा है। दूसरी तरफ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, अभी ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पनीर सेल्वम जी, क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन गवर्नर ने कहा कि आप व्यवस्था होते तक मुख्यमंत्री बने रहिए, यह कहा ही जाता है क्योंकि स्टेट को या देश को आप नेतृत्व विहीन नहीं कर सकते, तो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने फिर ब्लेम किया है, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया और वो अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र जो उन्होंने दे दिया है उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं और वो भी गवर्नर से मिले, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन फिर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहां देखना होगा दोस्तों कि सामान्य तौर पर हम सब जब पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो यही लगता है कि गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें हम करते पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये भी पढ़ते हैं गवर्नर के बारे में कि गवर्नर तो मूलतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है, और इसको लेकर के हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बेकार हो रहा है और गवर्नर के पद को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें होती हैं, लेख भी लिखे जाते हैं और बकायदे बहस भी होती है। ये पॉलिटी है, अब जो मैं आपको अभी जो बताया मैंने ये पॉलिटी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का पद है ना, अब उसमें यह ठीक है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। अब इस मायने में अब यहां आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, दोनों को मिला करके देखिए कि हम कहते हैं कि गवर्नर का पद खत्म कर देना चाहिए, राइट। ये जो अभी वर्तमान स्थिति जो क्राइसिस की स्थिति आई है, आप देख रहे हैं कि वहां एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और विद इन द पार्टी संकट पैदा हो गया है। और ये विद इन द पार्टी संकट क्यों पैदा हुआ, क्योंकि जो इससे पहले जो लीडर थे उन्होंने अपनी सेकेंड लाइन तैयार नहीं की। अगर उन्होंने सेकेंड लाइन तैयार कर दी होती कि भाई इसके बाद मेरे बाद ये नेतृत्व संभालेंगे तो ये क्राइसिस नहीं आती। तो ये वंशवाद या वंश परंपरा या सामंतीय प्रवृत्ति जो है हमारे राजनीति का, या सामंतीय जो चरित्र है, उसके कारण ये संकट पैदा हुआ है। चलिए पैदा हो गया। अब आप देखिए कि सब चीजें गवर्नर पर डिपेंड कर रही हैं कि अब वो इस संकट का हल कैसे निकालते हैं। अब वो संविधान का सहारा लेंगे। संविधान में क्या है या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, फिर अब हम संविधान पर आ रहे हैं। उसमें सीधे सीधे यह कहा गया है कि बहुमत दल का नेता चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ये जो अगर इस तरह के क्राइसिस आ जाते हैं तो जो बहुमत का फैसला होगा वो गवर्नर हाउस में नहीं होगा, राजभवन में नहीं होगा कि लोग अपने साथ एमएलए लेकर के आ गए और गिनवा दिया कि देखिए हमारे साथ इतने एमएलए हैं, या लिस्ट थमा दी सिग्नेचर करके कि देखिए हमारे साथ इतने एमएलए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर कट डिसीजन है कि जो फैसला होना चाहिए वो फ्लोर ऑफ द हाउस होना चाहिए, यानी विधानसभा के अंदर होना चाहिए। तो गवर्नर लगता है कि ये करेंगे, राइट। अब उनके सामने जो धर्म संकट पैदा हुआ, और मुझे लगता है कि शायद ये, अब मैंने इस तरह का धर्म संकट अभी तक नहीं सुना है दोस्तों कि एक ही पार्टी के दो लोग दावा करें। दो अलग अलग पार्टी के दावा करेंगे वहां तक तो ठीक होता है, लेकिन एक ही पार्टी के दो लोग दावा करें जिसमें एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री पहले से ही है और एक को लीडर चुन लिया गया है, तो ये तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार हो रहा होगा। मैं बहुत निश्चित नहीं हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे सारी चीजें मालूम ही हों। तो यह विचित्र किस्म का संकट पैदा हो गया है। अब गवर्नर को यह डिसाइड करना होगा पहली बात कि इन दोनों में से वो किसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाएं, क्योंकि दोनों का क्लेम बन रहा है। देखिए संविधान में इस तरह के संकट का कहीं उल्लेख नहीं है। अब यह राज्यपाल के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो यहां राज्यपाल का पद कितना महत्वपूर्ण है और राज्यपाल कितना शक्तिशाली है, एक झलक आपको दिखाई दे रही होगी जो फैक्चुअल है, जो सत्य भी है। एक कार्यवाहक ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं लेकिन त्यागपत्र दे चुके हैं, तो क्या उनको मौका दिया जाए, या दूसरे विधायक दल की नेता है तो क्या उनको मौका दिया जाए। अब देखते हैं कि क्या होगा, और यहां से फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन निकलेगा, क्योंकि राज्यपाल जो निर्णय लेंगे वो क्या होगा, वो एक तरीके का नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि आगे लोग फिर उसको कोट करेंगे, फॉलो करेंगे, या जो इस निर्णय से खुश नहीं होंगे फिर वो जाए अपना मत, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए इस निर्णय के विरोध में। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो दोस्तों इसे आप कहेंगे, इसमें अभी गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस का मतलब प्रशासन हो जाता है, तो प्रशासन अभी इसमें नहीं आया है। तो ये पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कैसे मिलाकर पढ़ना है, देखना है, उसकी एक झलक मैंने आपको यहां दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है कि इससे कुछ ऐसे आपको तत्व मिले हों या ऐसे पॉइंट्स मिल गए हों जिससे आप अपने पढ़ने के आगे के तरीके को बेहतर कर सकें या उसका इस्तेमाल कर सकें। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों। इसके बाद जो दो और खबरें थी फ्रेंड्स, वो खबरें हैं एक आधार कार्ड को लेकर के। आपने सुना कि राशन कार्ड के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है, और कुछ दिनों पहले ही आपने एक और खबर सुनी थी, मैंने हिंदुस्तान अखबार की का एडिटोरियल भी आपको प्रोवाइड किया था कि जो मोबाइल अगर आप फोन ले सिम के लिए जाते हैं तो उसको भी आधार नंबर से लिंक किया जाएगा, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तो आप देखिए कि कैसे धीरे धीरे आधार कार्ड का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि मोबाइल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा कि उसे आधार से लिंक किया जाए, जबकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आधार की जो वैधानिकता है उस पर संदेह व्यक्त करते हुए एक टिप्पणी की थी। इसके बाद दोस्तों हमारे वित्त मंत्री जी का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है राजकोषीय घाटा को लेकर के, कि किस तरह से कांग्रेस के समय में राजकोषीय घाटा 4 point something पहुंच गया था, जो अब लगभग 3.2 के आसपास पहुंच गया है। फिर भी अभी थोड़ा सा राजकोषीय घाटा ज्यादा है, क्योंकि जो अर्थशास्त्री हैं वो मानते हैं कि राजकोषीय घाटा अगर 2 के आसपास हो, 2 से 2.5 के आसपास, तो ये बेहतर समझा जाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन्होंने एक और भी बड़ी बात कही थी कि जो महंगाई है महंगाई नियंत्रण में है, ये एक अच्छी बात है, और वाकई में जो महंगाई है वो नियंत्रण में है। मित्रों ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज थी, और अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। मैं आज आपको 2 क्लिपिंग्स स्पेशली आपकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग्स है, जिसमें उन्होंने खासकर जो हमारे राजनीतिक दलों का जो लोकतांत्रिक चरित्र होना चाहिए उस पर लिखा है उन्होंने आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया का ही अच्छा आर्टिकल है, इसे आप देख लीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका सार आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पिछले साल मेंस के सेकेंड पेपर में पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। और इसके बाद एक जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का है, बच्चों को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे मालूम पड़ रहा है। और एक करप्शन को लेकर के, खासकर जो ब्लैक मनी है उसको लेकर के भी आर्टिकल है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है, इसे आप देख लीजिएगा। और दूसरे और भी आर्टिकल अवेलेबल है। दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, तनु कुमारी तोरपा झारखंड से, सुमित कुमार मुंगेर बिहार से, हरिवंश जायसवार, लीलावती कुमारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से, सौरभ पाठक नई दिल्ली से, मयंक त्रिवेदी, हरीश सिंह और प्रताप लोहिया बाड़मेर राजस्थान से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, इन 2 दिनों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से ये प्रार्थना भी कि ये 2 दिन आपके लिए नई ऊर्जा जागृत करने वाले सिद्ध हों। तो मित्रों अब मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।